अध्याय सात, थकान। सामान्यतः उद्योग में थकान और निरस्ता का अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की समान रुचि है। उत्पादन में कमी के लिए बहुधा कर्मचारियों के थकान को जिम्मेदार माना गया है। अतः नियोक्ता इस बात के लिए प्रयास करता है कि थकान को दूर किया जा सके। कर्मचारी भी इसे कष्टकर मानता है, अतः वह भी इसमें कमी करने अथवा समाप्त करने में रुचि रखता है। थकान का अध्ययन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया है। औद्योगिक मनोविज्ञान के बहुत से विषय सीधे अथवा परोक्ष रूप से थकान से संबंधित हैं। समय और गति का अध्ययन एक लक्ष्य कर्मचारियों में थकान के प्रभाव को कम करना है। यह कार्यविधि में परिवर्तन किया जाता है। प्राप्त परिणामों के आधार पर यह बात स्पष्ट है कि उचित प्रशिक्षण से कार्यविधि में सुधार किया जा सकता है, जिससे थकान में कमी लाई जा सकती है। उचित प्रेरणा द्वारा थकान के प्रभाव को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है। थकान का दुर्घटनाओं से भी संबंध पाया गया है। थकान शब्द बहुत व्यापक पैमाने पर उपयोग और दुरुपयोग हुआ है। सभी शरीरशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने थकान को प्रभावित करने वाले कारक की पहचान की है। कभी कभी थकान के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वरूपों में अंतर किया गया है। कोई शारीरिक क्रिया बहुत देर तक करते रहने से शारीरिक परिवर्तन होते हैं और इससे सुरक्षित कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार के कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। जब वह क्रिया आगे चलती रहती है तो व्यक्ति के अंदर तनाव एवं दबाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये दोनों परिवर्तन आपस में काफ़ी हद तक संबंधित होते हैं और उत्पादन में कमी लाते हैं। थकान को मायर ने इस प्रकार परिभाषित किया है, पहले किए गए कार्यों के कारण कार्य करने की योग्यता में कमी को थकान कहते हैं। इस परिभाषा में थकान के स्वरूप पर प्रकाश नहीं डाला गया है, बल्कि इसके प्रभावों को बताया गया है। जब हम इसके स्वरूप का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं, उस अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। यह बहुत हद तक सही है कि किसी कार्य को करने की योग्यता में कमी आना बहुत बातों पर निर्भर करता है। मुयुसियो के अनुसार थकान एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्रियाओं के कारण उत्पादन में कमी आती है और जैसे जैसे थकान की मात्रा बढ़ती जाती है उसी के साथ उत्पादन में कमी आती है। थकान की परिभाषा चाहे जो भी हो, यह कहना सुरक्षित है कि कार्य भले ही कुर्सी पर बैठने का हो तो भी थकान उत्पन्न करता है। थकान के वास्तविक स्वरूप को समझने में मुख्य कठिनाई यह है कि थकान में केवल मांसपेशियों का ही उपयोग नहीं होता, बल्कि दूसरे कारक भी, जैसे कार्य के घंटे, इसकी गति, मांसपेशियों का उपयोग और कार्य से संबंधित तनाव थकान को प्रभावित करते हैं। औद्योगिक थकानों में शरीर का कोई हिस्सा प्रभावित ना होकर पूरा शरीर प्रभावित होता है। अलग अलग लोगों में थकान की अभिव्यक्ति उनकी शक्ति, बल और व्यक्ति की तैयारी पर निर्भर करता है। औद्योगिक परिस्थिति में थकान के प्रभाव को समाप्त करने के लिए कार्य की गति इस प्रकार की होनी चाहिए कि व्यक्ति पुनः इतनी शक्ति प्राप्त कर ले कि जितना कि वह खर्च कर रहा है, और इसी के साथ साथ उन कारकों पर भी नियंत्रित करना चाहिए जो थकान उत्पन्न कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अनावश्यक थकान जो प्रतिकूल कार्य परिस्थितियों से उत्पन्न होती है को दूर कर सकता है। कार्यक्षेत्र में कमी अकुशल कार्यविधि, अकुशल औजार और अकुशल व्यक्तियों के कारण अनावश्यक थकान उत्पन्न होती है। इन समस्याओं पर नियंत्रण करके थकान में कमी ला जा सकती है अथवा इसे समाप्त किया जा सकता है। यूगोस्लाविया के जैगवे विश्वविद्यालय के एक बहुत ही रुचिकर प्रयोग किया गया था। प्रयोगात्मक समूह में 24 विद्यार्थी थे जिन्हें रात भर एक कमरे में रखा गया जहां वे रात भर जागते रहे। सुबह 6 बजे विद्यार्थियों को 6 मील तेज चाल से चलाया गया और उनके बाद 2 घंटे तक उनका परीक्षण होता रहा। नियंत्रित समूह में से 25 विद्यार्थी थे और रात में उन्हें सामान्य रूप से सोने दिया गया और सुबह उनका भी परीक्षण किया गया। प्रयोगात्मक समूह में इन 88.7% विद्यार्थी अपनी परिस्थिति को बहुत ही थकाने वाला माना, जबकि नियंत्रित समूह के 12% विद्यार्थी अपनी परिस्थिति को थकाने वाला बताया। मोसो ने प्रयोगशाला में थकान का अध्ययन किया है। उन्होंने एक यंत्र विकसित किया था जिसका नाम एग्रोग्राफ्ट है। इसके माध्यम से शरीर के किसी हिस्से का थकान और कार्य से क्या संबंध है पता लगाया जाता है। इसमें रस्सी के सहारे कुछ वजन लटका देते हैं जिसे किसी एक उंगली द्वारा खींचकर आगे और पीछे करना पड़ता है। इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में थकान उत्पन्न हो जाता है। इसमें उंगली का कार्य यह होता है कि वह रस्सी में बंधे हुए वजन को खींचते और छोड़ते रहते हैं जिससे रस्सी में बंधा हुआ भोजन वजन ऊपर उठता है और नीचे जाता है। अंगुली में बंधी रस्सी को खींचने और छोड़ने की प्रक्रिया मेट्रोनोम द्वारा नियंत्रित होती है। एग्रोग्राफ के प्रयोग द्वारा थकान के संबंध में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। पहला, यदि एक निश्चित भार पर प्रति 2 सेकंड के अंतर पर रस्सी को खींचने की प्रक्रिया चल रही है तो कार्यवक्र धीरे धीरे छोटा होने लगता है। यदि वजन 6 किलोग्राम का है तो 1 मिनट के बाद खींचने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यदि वजन कम कर दिया जाए तो कुछ समय के लिए पुनः रस्सी का खिंचाव संभव है, लेकिन थोड़ी ही देर में पुनः थकान हो जाएगी। दूसरा, यदि रस्सी को खींचने और छोड़ने और पुनः खींचने और छोड़ने के बीच 2 प्रयासों के बीच का समय 10 सेकंड कर दिया जाए तो थकान के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। तीसरा, यदि वजन की तुलना में कम वजन रहने पर उंगली के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। यदि दिए हुए वजन को जल्दी जल्दी खींचने और छोड़ने की प्रक्रिया दोहराई जाएगी तो धीरे धीरे खींचने और छोड़ने की तुलना में थकान अधिक रहेगा। पांचवा, कार्य अवधि जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे थकान से मुक्ति की अवधि बढ़ती है। जैसे 60 प्रयास के बाद पुनः सामान्य अवस्था में आने के लिए 2 घंटे का समय चाहिए, जबकि 30 प्रयास के बाद 30 मिनट का समय विश्राम के लिए पर्याप्त है। छठवां, एग्रोग्राफ पर परीक्षण करने के पहले यदि कोई दूसरा शारीरिक कार्य किया गया रहे तो उसका प्रभाव एग्रोग्राफ के परिणाम पर पड़ेगा। सातवां, नींद की कमी मानसिक कार्य तथा भूख के कारण भी मांसपेशियों के कार्य करने की क्षमता में कमी आती है। आठवां, मांसपेशियों के कार्य करने की क्षमता को मसाज करके रक्त प्रवाह में शकरा का इंजेक्शन देकर तथा अच्छा स्वास्थ्य और शरीर को अच्छा पोषण देकर बढ़ाया जा सकता है। नौवां, थकान की दर विभिन्न लोगों में भिन्न भिन्न होती है, लेकिन ऊपर बताई गई बातें सभी पर समान रूप से लागू होती हैं। थकान से संबंधित तथ्य, यदि शारीरिक थकान का मापन करना कठिन है तो मानसिक थकान का मापन करना और भी कठिन है। बहुत देर तक पढ़ने के बाद विद्यार्थी इस बात पर जिद करते हैं कि अब वे नहीं पढ़ सकते और सोने जा रहे हैं, लेकिन यदि उसी समय उनकी प्रेमिका का टेलीफोन आ जाए तो वे तुरंत झटपट तैयार होकर उनसे मिलने अथवा टेलीफोन पर बहुत देर तक बात करते रहते हैं। उनकी थकान कहाँ चली गई? विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि साधारण मानसिक कार्य करने के पश्चात भी न केवल कार्य उत्पादन में कमी आती है बल्कि बहुत से शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। संभवतः मानसिक थकान का सबसे बड़ा घटक तनाव और अभिवृत्तियां हैं जो प्रत्येक कार्य को संलग्न होती हैं, जिसे व्यक्ति के चुनौती के रूप में देखता है। परीक्षा में 3 घंटे तक लिखना तनावपूर्ण नहीं होता और ना ही थकाने वाला होता है। दूसरी ओर किसी मित्र को पत्र लिखना आलस्यपूर्ण कार्य लगता है। अतः तनाव न केवल मनोवैज्ञानिक होता है बल्कि शारीरिक भी होता है। कभी कभी व्यक्ति बहुत ही कठिन कार्य बिना थकान का अनुभव किए करता है, लेकिन साधारण कार्यों में जल्दी थकान का अनुभव करने लगता है। ग्रिफिथ तथा अन्य ने अपने अध्ययन में प्रति आधे घंटे पर थकान के अनुभव का मापन किया। इन्होंने यह अध्ययन शारीरिक श्रम तथा ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षकों पर किए थे। इस अध्ययन की सबसे प्रमुख बात यह थी कि इसमें सर्वाधिक थकान का अनुभव भोजन के अवकाश के पहले बताया गया था, जो कि एक आश्चर्यजनक परिणाम है, क्योंकि स्वाभाविक अवस्था में थकान का अनुभव कार्य की समाप्ति के लगभग होना चाहिए। थकान से संबंधित दूसरे तत्व निरस्ता और उबन है। निरस्ता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कार्य करे या ना। यदि कार्य में विविधता होती है तो व्यक्ति उसे पसंद करता है। उद्योगों में थकान को कम करने के लिए कार्य के घंटों में कमी, कार्य के बीच में विश्राम और कार्य वातावरण में सुधार करना आवश्यक है। निरस्ता में कमी लाने के लिए उचित व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। जिस व्यक्ति में उचित योग्यता, रुचि और अभिरुचि हो, उन्हें चुनने पर उनमें निरस्ता का अनुभव नहीं होगा। कार्य के घंटे तथा उत्पादन। उद्योगों में बहुत समस्या यह नहीं है कि थकान या निरस्ता होती है, बल्कि उससे अधिक आवश्यक यह है कि कर्मचारियों के कार्य के घंटे और उसके उत्पादन में किस प्रकार संबंध है। साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए कार्य की अवधि में वृद्धि कर दी जाए। बेरोजगारी के संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि रोजगार में वृद्धि करने के लिए कार्य सप्ताह को छोटा कर दिया जाए, लेकिन वास्तव में इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। कार्य के घंटों में वृद्धि से उत्पादन में कमी आती है। कर्मचारियों के लिए तथा उनके संघों के लिए कार्य की अवधि में कमी लाना अथवा वृद्धि करना एक संवेगात्मक समस्या है। मजदूर संघ कार्य के घंटों में कमी द्वारा वेतन की वृद्धि करवाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग ने एक सर्वेक्षण में पाया कि 40 घंटे प्रति सप्ताह और 8 घंटे प्रति दिन काम करने पर प्रति व्यक्ति घंटे की दर से सबसे अधिक उत्पादन होता है। 40 घंटे से अधिक काम करने पर उत्पादन में थोड़ी वृद्धि अवश्य होती है, लेकिन इसे कर्मचारियों की कुशलता में कमी आती है और कर्मचारियों की अनुपस्थिति बढ़ जाती है। 5 दिन के कार्य सप्ताह में कार्य के घंटों में वृद्धि करने पर मध्य सप्ताह में जो उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखती थी वह समाप्त हो गई। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि जब कार्य के घंटों में वृद्धि होती है तो कर्मचारी कार्य की गति में कमी करने को समायोजित करते हैं। कार्य सप्ताह। यदि कार्य सप्ताह 30 घंटे का कर दिया जाए तो कर्मचारियों की ओर से किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। पहले के अध्ययनों में पाया गया कि कार्य सप्ताह में परिवर्तन करने पर उत्पादन में कमी आती थी तथा उत्पादन लागत में वृद्धि होती थी। बलम और नेलर ने घंटे 30 के कार्य सप्ताह में सबसे अधिक उत्पादन और कार्य तुष्टि पाया है। कुछ लोगों का विचार है कि खाली समय में कर्मचारी क्या करेगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। यदि कंपनी और समुदाय वास्तव में इस बात के लिए चिंतित हैं तो उसे इस समस्या का बुद्धिमानी पूर्वक समाधान करना चाहिए। कार्य पर अनुपादक समय। एगल्स ने अपने अध्ययन में पाया कि कर्मचारी कार्य के दिन में 30% अनुपादक समय व्यतीत करता है। इससे वह सामानों को इकट्ठा करना, तैयार माल का वितरण, औजारों की धार तेज करना और आपस में कार्य के संबंध में विचार विमर्श पर समय व्यय करता है। बलम और नेलर के अनुसार यह समय करीब 50% के आसपास है। उनका कुछ समय अपने अधिकारी से बात करने में चला जाता है। वे 15 से 20 मिनट देर से काम पर पहुंचते हैं, बीच में कॉफ़ी चाय इत्यादि में समय खर्च करते हैं। विश्राम अवधि। हार्थन ने अध्ययन में यह सिद्ध हो चुकी है कि विश्राम से उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रबंधकों की दृष्टि में कर्मचारियों को निश्चित समय पर विश्राम देने से सुविधा रहती है। यदि ऐसा ना हो तो कर्मचारी किसी भी समय विश्राम कर सकता है। कुछ कर्मचारी अपने काम से जी चुराने में अपनी शक्ति नष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कोई टाइपिस्ट भले ही अपनी टेबल पर रहे, फिर भी यदि काम ना करे तो उसकी पकड़ करना कठिन है। वास्तव में विश्राम काल की संख्या और अवधि कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है कि पूरे कार्यकाल को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बाद। इन दोनों कार्यों के हिस्सों के मध्य 15 मिनट का विश्राम कार्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह निश्चित करने के लिए क्या वास्तव में 2 बार विश्राम उचित है, कर्मचारियों का साक्षात्कार लेना चाहिए और उनके कार्य उत्पादन का वितरण प्राप्त करके यह निश्चित किया जा सकता है कि यह कहां तक उचित है। विश्राम काल में कर्मचारियों को अपनी शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे यदि कोई कर्मचारी बैठकर काम करता है तो उसे विश्राम के समय खड़ा होना या टहलना चाहिए। यदि कोई खड़े खड़े काम करता है तो उसे विश्राम काल में कुछ देर बैठना चाहिए। कुछ औद्योगिक संगठनों में विश्राम काल में कर्मचारियों को नाश्ता दिया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के अभिवृत्तियों को अनुकूल बनाना है। अनुपस्थिति। अनुपस्थिति की घटना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, खासतौर से जब उत्पादन और कार्य सप्ताह के कार्य घंटों में संबंध का अध्ययन किया जाता है। जब कार्य के घंटों में वृद्धि होती है तो अनुपस्थिति में भी वृद्धि देखी गई है, जिससे कार्य के घंटों में कमी आ जाती है। अनुपस्थिति के कारणों का विश्लेषण करने पर इसके बहुत से कारण सामने आते हैं। सीनेट ने अनुपस्थिति का एक सर्वेक्षण किया। उसने 280 आदमियों तथा 470 स्त्रियों के 4 महीने के कार्य का विवरण अध्ययन किया और पाया कि स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक अनुपस्थिति पाई गई। बीमारी की वजह से स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में अनुपस्थिति 2 गुनी पाई गई और व्यक्तिगत कारणों में स्त्रियों में 3 से 4 गुना अनुपस्थिति देखी गई। उम्र के आधार पर इसमें विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। नेलर और विंसेंट के अनुसार स्त्रियों में अनुपस्थिति का संबंध उन पर आश्रितों की संख्या पर निर्भर करना है। यदि किसी स्त्री के ऊपर आश्रितों की संख्या अधिक होगी तो उसकी अनुपस्थिति की संख्या भी अधिक होगी। थकान को प्रभावित करने वाले वातावरण के तत्व। वातावरण के बहुत से कारक जैसे सौर, अपर्याप्त प्रकाश और अधिक तापमान थकान में वृद्धि करते हैं। आजकल इन तथ्यों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। बहुत से रिपोर्टों में यह बताया गया है कि जब इन परिस्थितियों में सुधार किया गया तो थकान में कभी कभी कमी आई है और उत्पादन में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, दुर्घटनाओं में कमी और कम अनुपस्थिति दिखाई पड़ती है। शोर नॉइस, शोर या अविश्रित आवाज संभवतः थकान में वृद्धि करती है और कुछ औद्योगिक परिस्थितियों में इससे बहरापन भी देखा गया है। यह विश्वास किया जाता है कि कर्मचारी शांति वातावरण में ज़्यादा उत्पादन करते हैं। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह देखा गया है कि शोर का उत्पादन पर थोड़ा असर पड़ता है। बिल्ली के अध्ययन में पाया गया कि शोर से कमी करने में थकान में कमी आती है, यद्यपि कि शोर को औद्योगिक परिस्थितियों में समाप्त नहीं किया जा सकता। शोर का प्रभाव शोर के प्रकार और कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है। मानसिक कार्य से शोर से ज़्यादा प्रभावित होती है। शोर का प्रभाव उस समय अधिक होगा जब शोर अनियमित एवं अरुचिकर होगा। कभी कभी कर्मचारी अधिक शक्ति का व्यय करके उत्पादन में कमी नहीं होने देता तथा थोड़े समय पश्चात वह उस वातावरण में कार्य करने का अभ्यस्त हो जाता है। शोर के कारण मांसपेशियों में भी तनाव उत्पन्न होता है, लेकिन थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद इसमें कमी हो जाती है। अतः औद्योगिक परिस्थिति में जहाँ तक संभव हो शोर पर नियंत्रित करना आवश्यक है। यह कष्टकर उत्पादन में कमी करने वाला, थकान उत्पन्न करने वाला तथा कुछ परिस्थितियों में बहरापन उत्पन्न करता है। प्रकाश, थकान में कमी करने के लिए प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। प्रकाश की उचित मात्रा और चमक थकान को प्रभावित करते हैं। आजकल इंजीनियरों ने 50 फुट की कैंडल्स प्रकाश की मात्रा औद्योगिक कार्यों के लिए उचित माना है। जहाँ पर अधिक महीने काम होता है वहाँ पर 100 फुट कैंडल्स या इससे भी अधिक प्रकाश की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। पूरे कार्यक्षेत्र में समान प्रकाश की मात्रा उचित होती है। यदि कार्यक्षेत्र के आसपास उचित प्रकाश नहीं होगा तो कर्मचारियों को बार बार समायोजन करना पड़ेगा, जिससे दृष्टि थकान अधिक होगी। अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश उत्पन्न करने पर यह बराबर मात्रा में हर जगह पहुंचती है। कार्य उत्पादन के लिए यह बहुत आवश्यक है। यदि कार्यक्षेत्र में कुछ जगह अधिक प्रकाश रहेगा तो कर्मचारियों की आंखें बराबर उसी स्थान की ओर घूमेंगी। इस प्रकार कभी कभी अधिक प्रकाश की ओर, कभी कभी कम प्रकाश की ओर देखने से आँख पर बल पड़ता है और इससे थकान उत्पन्न होता है। इसलिए कार्य क्षेत्र में प्रकाश की मात्रा समान रूप से होनी चाहिए। उचित तापक्रम पर स्तर न होने पर कर्मचारियों का कार्य उत्पादन, विश्राम और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तापक्रम का प्रभाव उस समय और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब कार्य में शारीरिक प्रयास की अधिक आवश्यकता पड़ती है और इसके स्तर की प्रभावशीलता आर्द्रता की मात्रा पर भी निर्भर करती है।